नमस्कार भारत, 30 अगस्त शुक्रवार, मैं हूं कुलदीप मिश्र। भारत प्रशासित कश्मीर में सेना पर आम लोगों की पिटाई और उत्पीड़न के आरोप, सेना का इनकार, बीबीसी की विशेष रिपोर्ट।
लाद भी मारा, झंडे भी मारा, पावर भी लगाया, केबल से मारा। हम पूछ रहे, हम बोल रहे थे हमारा कसूर क्या है, हमने उनको बोला भी कि आप मारो मत, गोली मारो।
पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की कश्मीरियों के पक्ष में बाहर निकलने की अपील।
इस फ्राइडे को उन्होंने ये कहा कि हम बाहर निकलेंगे और सड़कों पे खड़े होकर लोग जो हैं वो सॉलिडेरिटी का इजहार करेंगे।
सुनिएगा उस कश्मीरी नौजवान को जो घर नहीं जा पाया तो चला गया सुप्रीम कोर्ट।
SSP जो है श्रीनगर के, उनको बताया गया है कि आप घर तक इनको फैसिलिटेट करिए किसी भी तरीके से।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
BBC समाचार, संदीप राय से। कश्मीर घाटी के दक्षिणी जिलों में कई ग्रामीणों ने भारतीय सुरक्षा बलों पर टॉर्चर के आरोप लगाए हैं। ये आरोप ऐसे समय आए हैं जब केंद्र सरकार ने इस इलाके के विशेष दर्जे को खत्म कर दिया है और उसके बाद से यहां कड़े प्रतिबंध लागू हैं। एक ग्रामीण ने बताया कि उन्हें और उनके भाई को बिस्तर से खींचकर बाहर निकाला गया और उन लोगों के नाम पूछे गए जिन्होंने सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंके थे। कई ग्रामीणों ने BBC को बताया कि उन्हें डंडों से पीटा गया और बिजली के झटके दिए गए। कई गांव के निवासियों ने अपने जख्म दिखाए। हालांकि BBC अधिकारियों से इन दावों की पुष्टि नहीं कर पाया है, जबकि भारतीय सेना ने इन आरोपों को आधारहीन और अप्रमाणिक बताया है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतरिक्ष युद्ध के लिए एक नए पेंटागन कमान की स्थापना की है। उन्होंने कहा है कि अमरीका के प्रतिद्वंद्वी सैटेलाइट को निशाना बनाने वाली टेक्नोलॉजी के साथ पृथ्वी की कक्षा को हथियारों से भर रहे हैं। ये सेना के संचालन और अमरीकी तौर जिंदगी के लिए बहुत ही खतरनाक है। ट्रंप ने कहा कि स्पेस कमांड इन हितों और अंतरिक्ष में अमरीकी दबदबे की रक्षा करेगा। हमारे देश के लिए खतरा लगातार नए रूप ले रहा है और हमें भी इससे निपटने के काबिल होना होगा। जो अमेरिका को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और हमें अंतरिक्ष में चुनौती देना चाहते हैं, अब ये बिल्कुल ही अलग रूप लेने जा रहा है। ये थे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। कोलंबिया के पूर्व फार्क विद्रोही कमांडर इवान मार्केज ने फिर से हथियार उठाने का ऐलान किया है। कोलंबिया के राष्ट्रपति इवान डुकी ने इसकी निंदा करते हुए वीडियो में दिख रहे हरेक पूर्व गुरिल्ला कमांडरों को पकड़ने के लिए $8,82,000 के इनाम की घोषणा की है। एक वीडियो संदेश में इवान मार्केज ने सरकार पर विश्वासघात के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार की बेरुखी के चलते पिछले 2 साल में 500 से अधिक नेता और 150 गुरिल्ला मारे जा चुके हैं। उधर फार्क विद्रोहियों के पूर्व प्रमुख टिमोशेंको ने मार्केज के ऐलान को खारिज करते हुए खुद को अलग कर लिया है। हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि दूसरे विद्रोही गणराज्य की शुरुआत हो चुकी है। दुनिया के सभी लोगों का एक सार्वभौमिक अधिकार है कि वे दमन के खिलाफ हथियारबंद संघर्ष करें। हवाना शांति समझौते से सरकार के विश्वासघात के जवाब में ये उसी विद्रोही संघर्ष की ही कड़ी है। हमने ये समझौता इस भरोसे के साथ किया था कि इसमें जिंदगियों में फर्क आएगा, लेकिन सरकार ने नागरिकों की जिंदगी की गारंटी का सबसे अहम वादा भी पूरा नहीं किया। पूर्व फॉर्क गुरिल्ला कमांडर इवान मार्केज के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि नई ब्रेक्जिट डील हासिल करने के लिए वो यूरोपीय संघ के साथ समझौता वार्ता को और तेज करना चाहते हैं। सितंबर में ब्रिटिश वार्ताकार यूरोपीय समकक्षों से हफ्ते में 2 बार मिलेंगे। जॉनसन ने फिर दोहराया है कि ब्रिटेन अक्टूबर के अंत तक किसी भी हालत में अलग हो जाएगा। अमरीका का कहना है कि तालिबान के साथ शांति समझौते के बाद भी अफगानिस्तान में अमरीकी सेना स्थायी रूप से बनी रहेगी। ये बयान ऐसे समय में आया है जब कतर में अमरीका और तालिबान के बीच शांति समझौता वार्ता चल रही है। इस समय अफगानिस्तान में 14,000 अमरीकी सैनिक मौजूद हैं। यमन की सरकारी न्यूज एजेंसी ने राष्ट्रपति अब्द राबू मंसूर के हवाले से कहा है कि सरकारी फौजें नुकसान से बचने के लिए दक्षिणी शहर अदन से पीछे हट गई हैं। राष्ट्रपति ने सऊदी अरब से हस्तक्षेप की अपील की है। BBC समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भारत। मैं हूं कुलदीप मिश्र। भारत प्रशासित कश्मीर में बीते 25 दिनों से अप्रत्याशित पाबंदियां लगी हुई हैं। भारत सरकार ने जब से एक तरफा रूप से क्षेत्र के विशेष दर्जे को वापस ले लिया है, प्रशासन करीब 3,000 लोगों को हिरासत में ले चुका है, जिनमें कई बड़े नेता, वकील, पत्रकार और प्रदर्शनकारी शामिल हैं। सरकार का कहना है कि ऐसा एहतियात के तौर पर और भारत के इकलौते मुस्लिम बहुल प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक रखने के मकसद से किया गया है। भारतीय सेना यहां बीते 30 साल से अलगाववादी चरमपंथ से लड़ रही है। भारत प्रशासित कश्मीर में संचार के सभी साधन बंद होने और गैर भारतीय पत्रकारों के वहां प्रवेश करने पर पाबंदी की वजह से सूचनाएं बहुत धीमी गति से सामने आ रही हैं, लेकिन बीबीसी को आम लोगों के घरों में सेना के छापे, निर्मम पिटाई और उत्पीड़न के आरोपों की कई घटनाओं का पता चला है। अब जो रिपोर्ट आप सुनने वाले हैं उसके कुछ हिस्से आपको व्यथित कर सकते हैं। कश्मीर से बीबीसी संवाददाता समीर हाशमी की रिपोर्ट सुनिए मोहनलाल शर्मा की आवाज में।
इन लोहे के तारों के पीछे एक बेचैन करने वाली शांति पसरी है। हम जहां भी गए पाबंदियां मिली, लेकिन कई कश्मीरियों को ये कार्रवाई बहुत महंगी पड़ी है। हम यहां विचलित करने वाले आरोपों की पड़ताल के लिए आए हैं। हमें बताया गया कि यहां पहुंचे सैनिक हिंसक प्रदर्शनकारियों को खोज रहे हैं। आरोप है कि 13 लोगों को उनके बिस्तर से उठाकर पीटा गया। इनमें दो भाई भी थे जो बाकी लोगों की तरह अपनी पहचान बताने को लेकर बहुत डरे हुए थे। हमने उनके जख्म देखे।
लात भी मारा, डंडे भी मारा, पावर भी लगाया, केबल से मारा। हम बोल रहे थे हमारा कसूर क्या है। कुछ नहीं सुना हमें, किसी के नहीं सुना, न कुछ बोला, सिर्फ पीटते थे। हर जगह मारा, हर जगह जिसम पे हर जगह मारा। पावर टच इसलिए देते थे वो कि हम मारने से बेहोश होते थे, फिर वो टच देते थे, उससे हमको होश आता था। फिर वापस मिट्टी डाली मुंह में, चलाओ मत, चलाओ मत, चलाते क्यों हो। हमने उनको बोला भी कि आप मारो मत, गोली चलाओ। हम खुदा से मांगते थे कि गोली लगाए, क्योंकि उनके जो वो टार्चर बर्दाश्त नहीं होता था।
हाँ दिखाई।
एक व्यक्ति जो अब भी सदमे में है, उसने हमें अपने जख्म दिखाए। वो मानते हैं कि वो मुसलमान हैं, इसीलिए उन्हें निशाना बनाया गया।
थोड़ा होश में था, ऐसा उन्होंने खींचा, मुझे लगा शायद उन्होंने मुझे दांत ही निकाले, इतना ज़ोर से खींचा। फिर जब मैं फिर से बेहोश हो गया तो मेरे पर एक लड़का था, उन्होंने बोला कि उन्होंने जलाने की कोशिश की, किसी ने शायद उन फौजों में किसी ने क्या कुछ बताया कि उसको मत जलाओ।
हमने इन आरोपों को सेना के सामने रखा, जिसका हमें लिखित जवाब मिला। जवाब था कि ये आरोप बेबुनियाद और अप्रमाणित हैं, और जैसा कि आरोप है, भारतीय सेना ने किसी नागरिक के साथ मारपीट नहीं की है। सुरक्षा बल आम लोगों की सलामती और रक्षा के लिए ही काम करते हैं। भारतीय सेना एक पेशेवर संगठन है जो मानवाधिकारों को समझती है और उसका सम्मान करती है। ये था इन आरोपों पर भारतीय सेना का बयान। कश्मीर दशकों से संघर्ष में फंसा हुआ है। ये दुनिया के सबसे ज्यादा सैन्य मौजूदगी वाले इलाकों में है। यहाँ चरमपंथी समूहों के लिए काफी सहानुभूति है और उन्हें भारतीय शासन से आजादी के लिए लड़ रहे लोगों के तौर पर देखा जाता है। भारतीय सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों के बीच नफरत की जड़ें काफी गहरी हैं और अक्सर इस लड़ाई के बीच आम नागरिक फंस जाते हैं। सिर्फ एक गाँव नहीं है जहाँ से उत्पीड़न के आरोप सामने आए हैं। हमें बताया गया कि इस इलाके में कई लोगों के ऐसे ही अनुभव रहे हैं। हम चरमपंथियों के गढ़ कहे जाने वाले इलाके में भी गए। स्थानीय लोग हमें एक घर में ले गए। उनका कहना है कि भारतीय जवानों ने यहाँ एक नौजवान को टॉर्चर किया। इस नौजवान का भाई चरमपंथी है।
दोनों हाथ निकाले, यहाँ पर रस्सी बांधी, उन्होंने टांग ऊपर भी रस्सी बांधी और उल्टा लटकाया, फिर बहुत ज़्यादा मारा, तकरीबन 2-2.5 घंटे तक।
बाकी भारत में चरमपंथियों के परिवारों के लिए बहुत सहानुभूति नहीं है। वो उन्हें पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी के तौर पर देखते हैं। कई लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लिए जाने के साहसी फैसले का स्वागत किया है। प्रशासन का कहना है कि अब वो कुछ पाबंदियां हटा रहे हैं, लेकिन इंटरनेट और मोबाइल अब भी बंद हैं। हजारों लोग हिरासत में हैं। कश्मीर बाकी दुनिया से कटा हुआ है और यहाँ आक्रोश बढ़ रहा है।
भारत प्रशासित कश्मीर से बीबीसी संवाददाता समीर हाशमी की रिपोर्ट सुना रहे थे मोहनलाल शर्मा। आज शुक्रवार है, भारत प्रशासित कश्मीर में लोग जुमे की नमाज के लिए घरों से निकलेंगे, लेकिन पिछले तीन शुक्रवारों को घाटी के कुछ इलाकों में हुए प्रदर्शनों को देखते हुए इस बार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं श्रीनगर में मौजूद हमारे सहयोगी माजिद जहांगीर।
हमेशा जो है जुम्मा काफी सेंसिटिव रहता है कश्मीर में। आर्टिकल 370 के स्क्रैपिंग से पहले भी हमेशा जुम्मा के दिन जो है प्रशासन बहुत ही एक्टिव रहती थी कि कहीं पे प्रदर्शन ना हो जाए, और उनको रोकने के लिए काफ़ी इंतजाम किए जाते थे। और आज भी हमें ऐसा लग रहा है कि जब से आर्टिकल 370 को स्क्रैप किया गया और जो पिछले तीन जुम्मा गुजरे, और किसी भी बड़ी मस्जिद में, खासकर जो श्रीनगर के डाउनटाउन में जो हिस्टोरिकल ग्रैंड मॉस्क जिसको कहते हैं जामा मस्जिद, तो वहाँ बिल्कुल नमाज की इजाज़त नहीं दी गई। और हम खुद भी कई बार वहाँ गए जुम्मा के दिन, और वहाँ बिल्कुल एक ताला चढ़ा हुआ था बहुत बड़ा। तो इसी तरह से जितनी भी बड़ी मस्जिदें हैं श्रीनगर में या दूसरी जगहों पर, तो वहाँ नमाज की इजाज़त नहीं दी गई। और लोगों को, क्योंकि हमेशा प्रशासन को ये एक अप्रिहेंशन रहता है कि शायद लोग इकट्ठे हो जाएंगे और प्रदर्शनों का खतरा रहता है प्रशासन को, तो इस हवाले से आज भी जो है पूरे कश्मीर घाटी में किसी भी तरह की किसी भी बड़ी मस्जिद में ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से तनावपूर्ण माहौल कश्मीर में पिछले 25 दिनों से बना हुआ है, तो किसी बड़ी मस्जिद में, खासकर जो श्रीनगर की जामा मस्जिद है, आज वहाँ नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और सुरक्षा बलों की तैनाती का जहाँ तक सवाल है, तो जुम्मा के दिन जो पिछले तीन जुमाओं का, तीन फ्राइडेज का हमें तजुर्बा रहा, तो भारी संख्या में जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए थे, रेस्ट्रिक्शंस डाउनटाउन में या दूसरे इलाकों में लोगों के चलने फिरने पर प्रतिबंध था। हाँ, अलबत्ता इतना ज़रूर था कि जो जिन मोहल्लों में, जो छोटी छोटी मस्जिदें हैं मोहल्लों के अंदर, तो वहाँ नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई, और शायद आज भी ऐसा ही हो सकता है, लेकिन जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं दी जाएगी, ऐसा हमें लग रहा है।
श्रीनगर से हमारे सहयोगी माजिद जहांगीर को सुन रहे थे आप। और अब बात 24 साल के मोहम्मद अलीम सैयद की, जो भारत प्रशासित कश्मीर में अनंतनाग के रहने वाले हैं और जिन्हें सुरक्षित अपने घर पहुंचाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। जब अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म किया गया, तब अलीम दिल्ली में थे, घर वालों से संपर्क नहीं हो पाया और पाबंदियों की वजह से वो घर नहीं जा पाए, इसलिए वो गए सुप्रीम कोर्ट और शीर्ष अदालत ने उनके पक्ष में आदेश सुनाया। पूरी कहानी खुद मोहम्मद अलीम सैयद ने बताई, बीबीसी संवाददाता अभिमन्यु कुमार साहा से हुई इस बातचीत में।
जी, मैंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन डाली थी। वजह ये थी कि 4 अगस्त से मैं अपने घर पे बात नहीं कर पा रहा हूँ। इस बीच में ऐसी रिपोर्ट्स, ऐसी न्यूज मेरे पास आ रही है डिफरेंट सोर्सेस से कि वहाँ पे हालत खराब है, 4,000 लोगों को डिटेन किया गया है, ऐसी बहुत सारी वायलेंट सिचुएशन है। इस बीच में जो मेरा डर था, जो मेरी अप्रेंची फैमिली के रिगार्डिंग, वो और बढ़ गई, क्योंकि जब मैंने 4 तारीख को अपने घर पे बात की थी, तो मेरे घर वाले, जब पूरा कश्मीर पैनिक सिचुएशन में था, तो मेरे घर वालों को लग रहा था ये काफी बस एक रूमर है, तो वो रेडी भी नहीं हुए थे, उन्होंने राशन वाशन भी पूरा नहीं ला रखा था, वो रेडी नहीं थे इस चीज के लिए। इस चीज की वजह से मेरा अप्रेंशन, जो मेरा डर था, वो और बढ़ गया। मैं रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ हूँ, मैंने लॉ किया है, तो मेरे पास एक छोटा सा ऑप्शन अवेलेबल था, वो था कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए। तो इस वजह से मैंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की।
तो आपने जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली थी, और कोर्ट ने क्या आदेश दिए
उसमें? वो मैटर हमने 10 तारीख को फाइल किया था, उसमें कोर्ट ने ये बोला कि आप अपने घर चले जाइए, आपको अप्रहेंशन हो रहा है, आपको डर लग रहा है कि आपके घर वाले सही सलामत है या नहीं, तो आप जाके उनका वेलबींग देख लीजिए। तो ये कोर्ट का ऑर्डर था, और कोर्ट का ऑर्डर ये भी था कि आप जब कश्मीर चले जाएंगे, वापस आके आप एक रिपोर्ट दीजिएगा और एफिडेविट के साथ वो यहाँ पे सेंड कर दीजिएगा।
मतलब कि कोई आपको कागज दिया गया है या कोई सरकारी दस्तावेज दिए गए हों? जो
दस्तावेज नहीं दिए गए हैं, ये मेरे को उन्होंने बोला है कि आप जितना जो भी रिपोर्ट है आके वो हमें दे दीजिए, जो भी मैं वहाँ पे एक्सपीरियंस करूंगा, जो भी प्रॉब्लम्स हर्डल्स वहाँ पे है, वो आके मैं रिपोर्ट करूंगा विद एफिडेविट।
पहले भी तो जा सकते थे बिना याचिका डाले हुए, क्या परेशानी थी?
पहले इनफैक्ट मेरी टिकट बुक भी थी पर वो कैंसिल हो गई। मेरे पास एक ईमेल आया कि आपकी फ्लाइट जो है कैंसिल हो चुकी है। अगर मैं डिस्पाइट दैट मैं रीशेड्यूल करके अपना फ्लाइट कर लेता था तो मुझे श्रीनगर से जाना है अनंतनाग और वो है 55 किलोमीटर दूर है और जो अनंतनाग है वो साउथ कश्मीर के एरिया में आता है जो काफी वॉलेटाइल है। वहां पे मुझे कोई सर्टेनिटी नहीं थी कि यहाँ से एयरपोर्ट से अनंतनाग तक कोई भी मुझे मतलब ट्रांसपोर्टेशन मिल सकती है। अगर कम्युनिकेशन नेटवर्क खुला रहता तो मैं अपने घर पे कॉल करता, वहाँ पे घर वाले मेरे एयरपोर्ट पे मुझे रिसीव करने आते, बट जब कम्युनिकेशन सिस्टम ही पूरा बंद हो गया था तो मैं कैसे घर वालों से कॉन्टेक्ट करता। काफी हाई हेल्पलाइंस आए थे, हेल्पलाइन वगैरह, वहां पे मैंने अपने फ्लाइट डिटेल्स डाली, मैंने नंबर पे जो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करने की कोशिश की बट जो कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आया तो वहां पे मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा देन टू वेट एंड अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट।
अब कैसे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के?
जी अब जो ऑर्डर आ रहा आप देखें तो वहां पे एसएसपी जो है श्रीनगर के उनको बताया गया है कि आप जो इनकी घर तक इनको फैसिलिटेट करिए किसी भी तरीके से। अब एटलीस्ट में एक एश्योरेंस होगी कि अगर मैं वहां जाऊंगा तो मैं घर पहुंच पाऊंगा।
अनंतनाग के रहने वाले मोहम्मद अलीम सैयद से बात कर रहे थे अभिमन्यु कुमार साहा। कश्मीर के मौजूदा हालात पर पाकिस्तान से भी लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक कदम और बढ़ाते हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने आज दोपहर 12 बजे पाकिस्तान में कश्मीर आर का ऐलान किया है। उन्होंने पाकिस्तान की आम जनता से अपील की है कि वो इस वक्त घर से बाहर निकलें और कश्मीरियों के साथ अपनी एकजुटता दर्शाएं। हमारी सहयोगी सिंधु वासनी ने बीबीसी उर्दू संवाददाता आसिफ फारूखी से संपर्क किया और पूछा कि इस कदम से इमरान खान क्या संदेश देना चाहते हैं।
इमरान खान प्रधानमंत्री ने जो पिछले 2-3 दिन पहले एक नेशन से स्पीच की थी ऑन टेलीविजन, उसमें उन्होंने ये ऐलान किया था कि दे वांट द पीपल ऑफ कश्मीर के उन्हें पता चले कि पाकिस्तान के लोग उनके साथ खड़े हैं। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि वो ये भी चाहते हैं कि दुनिया को भी पता चले कि कश्मीर एक मुद्दा है और इंडिया वहां पे जुल्म कर रहा है और ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं जो कि दुनिया को पता चलना चाहिए। तो ये उनका पॉइंट था और इसीलिए उन्होंने कहा कि हम एज अ नेशन हफ्ते में एक दिन जो है वो एक घंटा कश्मीरियों के नाम किया करेंगे और इस फ्राइडे को उनको उन्होंने ये कहा कि हम बाहर निकलेंगे और सड़कों पे खड़े होकर लोग जो हैं वो सॉलिडैरिटी का इजहार करेंगे ताकि कश्मीरियों को पता चले कि वो अकेले नहीं हैं और इस मुश्किल टाइम में पाकिस्तानी नेशन जो है वो उनके साथ खड़ी है।
विश्लेषकों का एक तबका है, उनका ऐसा मानना है कि अर्थव्यवस्था की जो बुरी हालत है उससे ध्यान भटकाने के लिए इमरान खान बड़े ही जोर शोर से मुद्दा उठा रहे हैं ताकि लोगों का ध्यान किसी तरीके से डाइवर्ट किया जा सके।
देखिए पाकिस्तान जो है वो इंटरनल काफी सारे क्राइसिस से गुजर रहा है जिसमें पॉलिटिकल क्राइसिस भी है जिसमें इकोनॉमिक क्राइसिस भी है। जो लोग पॉलिटिकल क्राइसिस का शिकार हैं, जो अपोजिशन पार्टीज के लोग हैं जो जेल में डले हुए हैं जिन पे करप्शन के एलिगेशंस हैं और उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उनका ये कहना है कि वो इकोनॉमी पे से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि ये पॉलिटिशियंस के खिलाफ इसलिए कार्रवाई कर रहे हैं ताकि इकोनॉमी पे से तवज्जो लोगों की हट जाए। और इसी तरह जब बॉर्डर पे कोई गड़बड़ होती है तो लोग ये बाज लोग ये कहते हैं कि इंटरनल जो क्राइसिस है उससे बचने के लिए इमरान खान जो है वो बॉर्डर पे छेड़छाड़ करवाते हैं। तो ये सारी बातें चल रही हैं, लोगों के ओपिनियन है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर यही है कि पाकिस्तानी जो कोई भी गवर्नमेंट हो कोई भी नेता हो कश्मीर के मामले में वो एक साथ होते हैं और उसमें वो कोई दूसरा ओपिनियन कोई दूसरी लाइन दे नहीं सकते। देखिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट बहुत कीन है कि इस मुद्दे को कश्मीर के मुद्दे को इंटरनेशनलाइज किया जाए और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर जो है वो यूएन में भी जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ। तो पाकिस्तानी जो है वो नेता और जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो काफी इस पे तेजी से काम कर रही है और उनकी कोशिश यही है कि इस इशू को इस वक्त डेड ना होने दिया जाए बल्कि इस पे आवाज जो है वो मुसलसल उठाते रहा जाए।
बीबीसी उर्दू संवाददाता आसिफ फारूखी से बात कर रही थी सिंधु वासनी। और अब बात दक्षिण अमरीकी देश कोलंबिया की, जहां एक बार फिर 2016 की तरह हिंसक गृहयुद्ध की आशंका जताई जा रही है। दरअसल यहां के पूर्व विद्रोही समूह फार्क के वरिष्ठ कमांडर इवान मार्केज ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि वो फिर से हथियार उठा रहे हैं। इस वीडियो में उनके इर्द गिर्द कई पूर्व विद्रोही कमांडर बंदूक लेकर खड़े हैं। वीडियो में इवान मार्केज आरोप लगा रहे हैं कि सरकार 2016 के शांति समझौते का पालन करने में नाकाम रही है, इसलिए वो एक नया समूह बना रहे हैं। साल 2016 में एक शांति समझौते के बाद 50 साल पुराने हथियारबंद संघर्ष का अंत हुआ था और इसमें प्रमुख वार्ताकार फार्क कमांडर इवान मार्केज ही थे। कोलंबिया के राष्ट्रपति इवान ड्यूकी ने कहा है कि वो इवान मार्केज को खोज निकालेंगे। इस घटना के क्या मायने हैं, बीबीसी संवाददाता गुरप्रीत सैनी ने पड़ोसी देश ब्राजील में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार शोभन सक्सेना से बात की।
करीब आधे घंटे का वीडियो है, इसमें इवान मार्केज ने इस बात की है कि वो फिर से हथियार उठाएंगे और उनके साथ करीब ऐसा माना जाता है कि 2 से 2500 गुरिल्ला उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं। 2016 में कोलंबिया में बहुत बड़ा एक संधि हुई थी जो कि फार्क और सरकार के बीच में हुई थी, लेकिन उसमें काफी समस्याएं हुई क्योंकि जो कोलंबिया के राष्ट्रपति हैं उन्होंने उसका विरोध किया था जब वो चुनाव लड़ रहे थे, और इस संधि को देश की जो पार्लियामेंट है उसने पास नहीं किया है, वहां पे फंसी हुई है, और इसमें और भी समस्याएं आई हैं क्योंकि उनको इवान मार्केज इस बात का डर है कि उनको हिरासत में लिया जा सकता है, उनको अमेरिका भेजा जा सकता है कोलंबिया की सरकार के द्वारा। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए कि बहुत बड़ा एक ये कह सकते हैं बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, जो शांति बनी हुई थी कोलंबिया में पिछले 3 सालों से ऐसा लगता है कि वो भंग हो जाएगी, और अगर उन्होंने फिर से हथियार उठा लिए तो एक जो गृह युद्ध कोलंबिया में चल रहा था कई सालों से दशकों से उसको वापस आने की उसकी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है।
जी, अब फार्क के बारे में आप बताइए, ये समूह क्या था और क्या करता था?
देखिए, फार्क एक अपने आप को एक रिवोल्यूशनरी संगठन कहते हैं, और ये जो कोलंबिया की जो जनजाति लोग हैं या जो वहाँ के रूरल एरियाज में लोग रहते हैं उनके उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन ये इनके पास हथियार थे और इन सरकार के साथ इनका बहुत लंबी लड़ाई चली है। तो फार्क को देखने के 2 तरीके हैं, अगर आप उनके दृष्टिकोण से देखें तो ये अपने आप को क्रांतिकारी संगठन मानते हैं, लेकिन अगर आप सरकार की नजर से देखें तो उनको मानते हैं कि ये एक क्रिमिनल संगठन के रूप में देखते हैं जो कि ड्रग्स का धंधा भी करता है, हथियारों का धंधा भी करता है। लेकिन आप अगर कोलंबिया में जाएं, वहां से लोगों से बात करें तो फार्क के पास अच्छा खासा सपोर्ट भी रहा है, उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, और जो खास करके जो लोग वहाँ के रूरल एरियाज में रहते हैं उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी है, और इस पूरे क्षेत्र में दक्षिण अमेरिका में फार्क को बहुत ज्यादा नहीं लेकिन काफी हद तक समर्थन भी प्राप्त है।
शांति समझौता जो 2016 में हुआ था उसमें किन किन बिंदुओं पर सहमति बनी थी?
उसमें देखिए 2 मुख्य मुद्दे थे। पहला तो यह था कि फार्क अपने जो इनके हथियार है वो उनको रख देगा, सरकार को सौंप देगा और ये मुख्य धारा की राजनीति में आ जाएंगे, और जो क्योंकि अगर ये करेंगे तो जो इनके खिलाफ जो मुकदमे थे, इनके खिलाफ जो केसेस थे उसको सरकार जो है कोई भी उस पर कोई की प्रक्रिया सरकार की तरफ से नहीं होगी। लेकिन यही बात मुद्दा के फंस गया है क्योंकि फार्क और सरकार के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग होनी थी वो नहीं है, इन्होंने अपने सारे हथियार नहीं रखे क्योंकि इनको सरकार पे विश्वास नहीं है, और दूसरी तरफ सरकार ने जो इनको भरोसा दिया था कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी वो भी अब तक नहीं हुई है। इसी वजह से अब ये वापस स्थिति जो है 2016 या उससे पहले की इसी गंभीर स्थिति में कोलंबिया वापस जा रहा है।
ब्राजील में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार शोभन सक्सेना। और अब समय है दिल्ली से छपने वाले अखबारों की समीक्षा का। संदीप राय अखबारों के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। संदीप बताइए।
जी कुलदीप, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की खबरें आज के अखबारों की सुर्खियों में हैं। कई तरह की हर अखबार ने अलग अलग विषय को अपना हेडिंग बनाया है। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है कि भारत ने पाकिस्तान को चेताया, इलाके में तनाव न बढ़ाएं। विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तानी नेता बेहद गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि आज करतारपुर पर दोनों देशों के बीच वार्ता है, और इस बीच पाकिस्तान के मिसाइल टेस्ट और विमान मार्ग बंद करने की धमकी से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है।
जी, और जनसत्ता ने एक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान छापा है जिसमें वो कह रहे हैं कश्मीर कभी पाकिस्तान का था ही नहीं।
जी, इसी तरह टाइम्स ऑफ इंडिया की भी एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तानी ट्रेंड कमांडो कच्छ की खाड़ी से घुस सकते हैं। पानी के भीतर से आतंकी हमले को लेकर गुजरात के कोस्ट गार्ड को अलर्ट भी कर दिया गया है।
और नवभारत टाइम्स में पहले पन्ने पर इसी से जुड़ी खबर है कि चरमपंथी हमलों से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने आधुनिक तकनीक अपनाई है और भारतीय हवाई अड्डों पर एक ऐसा सिस्टम लगाने की तैयारी हो रही है जिसमें किसी के चेहरे के हाव भाव और चाल ढाल देखकर ही खतरे का अंदाज़ा लगाया जा सकेगा।
जी, ऐसी चीज़ें हम लोग चीन में अक्सर सुनते रहे हैं कि जहाँ फेस डिटेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है कैमरों में। हम आगे बढ़ते हैं, कश्मीर की कुछ खबरें हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के अनुसार अमेरिका ने गुरुवार को कहा है कि जम्मू कश्मीर के निवासियों पर जारी कड़े प्रतिबंधों की खबरों को लेकर वो चिंतित है। भारत में अमेरिकी राजदूत ने एक बयान जारी कर भारत सरकार से मानवाधिकार के प्रति संजीदगी दिखाने और प्रभावितों से बातचीत करने की अपील की है।
जी, और एक खबर में और जनसत्ता में है, सबसे नीचे एक खबर छपी है भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के हवाले से कि भाजपा के सदस्यों की संख्या 18 करोड़ अब हो गई है। इनका कहना है कि जगत प्रकाश नड्डा का कहना है कि पहले हमारी यानी भाजपा की सदस्य संख्या 11 करोड़ थी और इस बार जो सदस्यता अभियान चला उसमें 5,81,34,242 लोगों ने ऑनलाइन माध्यम से ये सदस्यता ली है। बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए संदीप राय का। और अब समय है खेल समाचारों का।
खेल समाचारों के साथ मैं वरुण दत्ता। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरा और आखिरी टेस्ट शुरू होगा। युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत शुक्रवार से वेस्ट इंडीज के खिलाफ शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट में बेहतर प्रदर्शन करने को बेताब होंगे। पहला टेस्ट भारत ने 318 रन से जीता था। सबीना पार्क में होने वाले दूसरे टेस्ट में कप्तान विराट की टीम की निगाहें क्लीन स्वीप करने पर होंगी। T20 और वनडे सीरीज टीम इंडिया पहले ही जीत चुकी है। गेंदबाजी कोच भारत अरुण ने कहा कि यहां के हालात और विकेट अच्छी नजर आ रही है। पहले टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करने वाले जसप्रीत बुमराह और ईशांत शर्मा अनुकूल परिस्थितियों में वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों की तकनीकी खामियों का फायदा उठा सकेंगे। हालांकि पंत की बल्लेबाजी फॉर्म भारतीय टीम प्रबंधन के लिए चिंता का सबब है, लेकिन फिर भी अंतिम एकादश में बदलाव की संभावना नजर नहीं आती। रन बनाने से ज्यादा पंत के आउट होने का तरीका चिंताजनक है। भारतीय थिंक टैंक ने 21 साल के रुड़की के इस युवा से बड़ी उम्मीदें लगा रखी है। ड्रेसिंग रूम में रिद्धिमान साहा भी हैं। ऐसे में पंत चीजों को हल्के में नहीं ले सकते। और अब बात करते हैं टेनिस के खेल की। हाल ही में चल रहा है US ओपन। गत चैंपियन नोवाक जोकोविच ने कंधे के दर्द के बावजूद बुधवार को बारिश से प्रभावित US ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट के तीसरे दौर में प्रवेश किया, जबकि रॉजर फेडरर ने एक और धीमी शुरुआत करते हुए कदम आगे बढ़ाए। सर्बियाई खिलाड़ी जोकोविच ने अपने कंधे की चोट के बारे में कहा, इससे निश्चित रूप से मेरी सर्विस और बैकहैंड पर असर पड़ रहा था। मेरी सचमुच काफी परीक्षा हुई। दर्द के साथ खेलना आसान नहीं था, लेकिन आपको उम्मीद करनी होती है कि आपको कुछ मौके मिले हैं और कुछ शॉट भाग्यशाली रहे। हालांकि इस चोट से उनके प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा, इस तरह की चुनौती मेरे सामने पहली बार नहीं आई है। मैं बर्फ का पैक इस्तेमाल करूंगा, देखते हैं क्या होता है। और आज पुरुष एकल के दूसरे दौर में थानासी कोकिनाकिस और राफेल नदाल के बीच मुकाबला होना है।
चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर सुनिए संदीप राय से।
BBC समाचार। कश्मीर घाटी के दक्षिणी जिलों में कई ग्रामीणों ने भारतीय सुरक्षा बलों पर टॉर्चर के आरोप लगाए हैं। कई ग्रामीणों ने BBC को बताया है कि उन्हें डंडों से पीटा गया और बिजली के झटके दिए गए। अमरीकी राष्ट्रपति ने अंतरिक्ष युद्ध के लिए एक नए पेंटागन कमान की स्थापना की है। ट्रंप ने कहा है कि स्पेस कमान अंतरिक्ष में अमरीकी दबदबे की रक्षा करेगा। कोलंबिया के पूर्व फार्क विद्रोही कमांडर इवान मार्केज ने फिर से हथियार उठाने का ऐलान किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि ब्रिटेन अक्टूबर के अंत तक किसी भी हालत में अलग हो जाएगा। अमरीका का कहना है कि तालिबान के साथ शांति समझौते के बाद भी अफगानिस्तान में अमरीकी सेना स्थायी रूप से बनी रहेगी। यमन के राष्ट्रपति अब्द राबू मंसूर ने कहा है कि सरकारी फौजें नुकसान से बचने के लिए दक्षिणी शहर अदन से पीछे हट गई हैं। BBC समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। आपसे हमारी मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में फिर होगी। इस कार्यक्रम में स्टूडियो संभाल रहे थे देवाशीष कुमार। तो कुलदीप मिश्र को समस्त साथियों के साथ दीजिए अनुमति और देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए BBC हिंदी की मल्टीमीडिया वेबसाइट के साथ। नमस्कार।